तमस्तु मा विद्विषावहै अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुःसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदगुरये नमः जुगादगुरये नमः सतगुरये नमः श्रीगुरुदेवये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानन्द भगवान् की जय। श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय। घट घट में व्याप्त सर्वंतर जामी प्रभु पिता परमात्मा के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए सर्वकाल वंद ब्रह्मलीन वेदांत के श्री श्री स्वामी निर्मल जी महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अनंत श्री विभूषित परमवीत राग वृत्त श्रोमणी परम पूज्यपाद निर्मल पीठाधीश्वर श्री 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 महंत जी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धे स्वामी निर्मल चेतन जी महाराज तथा उपस्थित संत वृंद भक्त वृंद सबका अभिनंदन करते हैं। प्रभु की कृपा हो रही है जो आध्यात्मिक चर्चा ज्ञान चर्चा वेदांत चर्चा ज्ञान चर्चा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संसार में आ करके जो इस प्रकार का चिंतन कर पाते हैं या श्रवण कर पाते हैं उन्हीं का संसार में आने का प्रयोजन सफल होता है। वही लोग अपने लक्ष्य को पहचान करके उस लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। जिनको महापुरुषों की संगति में आकर के विवेक प्राप्त होता है, संसारिक विषयों का त्याग और भोग में त्याग, धन में निर्लोभता इत्यादि जो चिंतन करने की प्रक्रिया है, चिंतन करने का फल है, वह महात्माओं की संगति से प्राप्त होता है, गुरु चरणों में आकर के प्राप्त होता है। कबीर जी महाराज जी की पावन वाणी का हम चिंतन कर रहे हैं। संसारिक विषयों की अनित्यता, मिथ्यात्व निश्चय करवाया है कबीर जी महाराज जी ने। और जिस शब्द की हम विचार कर रहे थे कल, उसी शब्द में फिर आते हैं। कबीर जी महाराज जी का जो पावन शब्द है गौड़ी राग में, आठ पदे का यह शब्द है, तो इसका जो सूत्र है, इसका जो सिद्धांत है, इस शब्द में जो विचार का केंद्र बिंदु है, वो कबीर जी महाराज जी ने रहाओ वाली पंक्ति में कथन किया है। बिख्या अजह सुरत सुख आसा, कैसे होई है राजा राम निवासा। यहाँ सिद्धांत बतलाया है कि इस जीव का चिंतन किस प्रकार का है। ये जीव संसारिक विषयों में आसक्त होकर के किस प्रकार का चिंतन करता है और कब तक करता है। चिंतन हम करते रहते हैं ना हर रोज, किस प्रकार का चिंतन करते हैं, कब तक करते हैं। तो जब संसारिक दुखों को सुनते हैं या श्रवण करते हैं या अनुभव करते हैं, हर रोज के जीवन में ऐसा होता है कि संसारिक पदार्थों का जो दुख है उसका हम अनुभव करते हैं हर रोज। और श्रवण तो कर ही रखा है कि संसारिक पदार्थों में कभी भी सुख नहीं है, सुख केवल ब्रह्म में है, आत्मा में है। परिच्छिन्न में सुख नहीं, व्यापक में सुख है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। अल्प में, परिच्छिन्न में, जो देश काल वस्तु के अधीन है पदार्थ, उसमें सुख नहीं है। तो फिर भी ऐसा श्रवण भी कर रखा है और अनुभव भी करते हैं, तब भी हमारी आसक्ति बार बार उसी सुख में होती है, संसारिक सुख में, विषयक सुख में। और श्रवण करने के बाद भी बिख्या अजहो सुरत, अभी तक भी सुरत का अर्थ है प्रेम, जो हमारी सुरति है, लेव है, प्रेम है, लगन है, वो कहाँ है। बिख्या सुख, विषय सुख में है, विषय सुख की आशा यानी तृष्णा, इच्छा हमारे अंदर अभी भी है। विषय सुख से हम निवृत्त नहीं हो पाते, बार बार विषय सुख का ही चिंतन करते रहते हैं। तो कैसे हुई है सबसे पहले इस प्रकार कहते हैं कि जब हम श्रवण कर रखा है तब भी हमारी श्रवण करने के बाद, अनुभव करने के बाद जो लगन है, जो श्रुति है, उसी सुख में है। तो जब इस प्रकार के सुख की तो कहते हैं भी इस प्रकार की
बाहर ले चल रहे हैं,
उसी प्रकरण की फिर पावन वाणी है, उसी का चिंतन करते हैं। कबीर जी महाराज
सुनना छोड़ना रहा चल रहा चल रहा रहन दो ना, हम नहीं कुछ होना गड़बड़ हो गया।
तो कहते हैं कि कबीर जी महाराज जी की जो पावन वाणी का चिंतन हम कर रहे हैं, कबीर जी का जो पावन शब्द है एक बार उसको देखते हैं, उसका पाठ करते हैं। गौड़ी ग्वारे री के पदे 35 राग गौड़ी ग्वारे री अष्टपदी कबीर जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख मांगत दुख आगे आवै सो सुख हम हो न मांगया भावै, दिख्या अजहो सुख सुख आसा कैसे होई है राजा राम निवासा रहाओ, इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो साठ कर जाना, सनकादक नारद मुन सेखा तिन भी तन मह मन नहीं पेखा, इस मन का कोई खोज हो भाई तन छूटे मन कहाँ समाई, गुरप्रसादी जय देव नामा भगत कै प्रेम इन्हीं है जाना, इस मन को नहीं आवन जाना जिसका भ्रम गया तिन साच पछाना, इस मन का रूप न रेख्या काई हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने भेओ एह मन लीन भये सुख देओ, जियो एक अर सगद शरीरा इस मन को रव रहे कबीरा। यह पावन शब्द कबीर जी महाराज जी का है। इसके अंदर कबीर जी महाराज संसारिक सुख की इच्छा से चलने वाले लोगों को सुचेत करते हैं, सावधान करते हैं कि बिख्या अजह सुरत सुख आशा कैसे हुई है राजा राम निवासा। श्रवण करने के बाद, संसार के दुख देखने के बाद भी हमारी जो प्रीति है, हमारा जो प्रेम है, हमारी जो दौड़ है वो विशेष सुख की प्राप्ति की तरफ है। तो जब तक संसार के सुख में प्रीति है तब तक कैसे हुई है राजा राम निवासा। जो राम हैं, जो रमण करते हैं, जो व्यापक है, उसका दर्शन कैसे हो सकता है, यानी उस राम में हमारा निवास कैसे हो सकता है, तो उस राम का हम चिंतन कैसे कर सकते हैं। तो कबीर जी महाराज कहते हैं, सुख मांगत दुख आगे आवै सो सुख हम हो न मांगया भावै। संसारक दुख और संसारक सुख दो चीज़ों का हम अनुभव करते हैं, या सुख का या दुख का। तो इस कहते हैं जो संसारक सुख मांगने वाले हैं ना, चाहने वाले हैं, या तो संसार में रहते हुए हम सुख की इच्छा करते हैं, या फिर परलोक के जो स्वर्ग आदि के सुख हैं उसके लिए कर्म करते हैं कि इस संसार में भी हमारी धन संपत्ति आदि जो भी प्रपंच दिखाई पड़ता है, हम सभी व्यक्ति या स्थान या परिस्थिति से सुख की इच्छा करते हैं, दुख की नहीं करते। तो जो लोग सुख की चाहना करते हैं ना, उनको कहते हैं कि सुख थोड़ी देर के लिए अनुभव अवश्य होता है, लेकिन उस दुख के बाद, उस सुख के बाद में क्या होता है, दुख। क्योंकि सुख, जिस सुख की इच्छा की है वो क्षणिक सुख है, वो बना नहीं रहता, क्योंकि मिथ्या सुख है, कल्पित सुख है। तो कल्पित पदार्थों का जो कल्पित सुख है, पदार्थ जब अनित्य है तो सुख भी अनित्य है। कर्म के द्वारा अपनी चेष्टा से जो कर्म के द्वारा सुख चाहते हैं वो सुख क्षणिक है, क्योंकि संसारक पदार्थ भी क्षणिक हैं, तो उनसे होने वाला सुख भी थोड़ी देर का है। और उस सुख के बाद में क्या होता है, दुख आगे आवे, उसके आगे फिर दुख आता है इस संसार में रहते हुए। या हम कर्म करते हैं स्वर्ग आदि की इच्छा से कि स्वर्ग में जा कर के सुख लेंगे, तो वह बड़ा जो सुख है ना वो भी क्षणिक है, रहने वाला स्थाई वह भी नहीं है। यहाँ से कर्म करते हैं स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जा कर के वहाँ का जो ऐश्वर्य सुख है उसको भोगेंगे, मिलता है सुख, लेकिन दुख आगे आवे, उसके बाद क्या होता है, चीणे पुण्य मर्त्यलोक मिशन्ति। जब वहाँ से जा कर के हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं फिर नीचे गिरने का दुख होता है, फिर नीचे गिरना पड़ता है। सुख मांगत दुख आगे आवे, जो लोग सुख मांगते हैं वो सुख में ही दुख का बीज है, सुख में ही दुख का बीज है, तो सुख के बाद में दुख मिलता है। कबीर जी महाराज जी को किसी ने कहा था कि आपके पास महात्मा की मंडली आती रहती है, आपके पास उनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, इतनी गरीबी है, तो आप प्रभु पिता परमात्मा से कुछ मांग लीजिए, पदार्थ मांग लीजिए, जिससे आपका गुजारा भी अच्छा होता रहे और महात्माओं की सेवा भी होती रहे। तो कबीर जी महाराज जी ने ऐसा जो कहने वाले लोग हैं उनके प्रति ये शब्द उच्चारण किया कि संसारक पदार्थ मिलने का जो सुख कहते हैं ना आप लोग, वो संसार में तो कुछ देर के लिए हम प्रसन्न हो जाते हैं, जब कोई किसी के घर में पुत्र नहीं होता तो माता पिता को पुत्र की प्राप्ति का दुख रहता है कि कब पुत्र की प्राप्ति हो, किसी के घर में धन नहीं होता तो वो धन की कमी से दुखी है, किसी के पास मकान नहीं है तो वो मकान की चिंता करके दुखी है, किसी का शरीर रोगग्रस्त है तो वो शरीर के रोग की निवृत्ति चाहता है इसलिए दुखी है। दुख है ना उस सुख से पहले, सबको दुख है, उस दुख की निवृत्ति चाहता है किस लिए, कि मेरे को सुख मिले। तो जब किसी के घर में पुत्र पैदा हो जाता है, किसी को धन मिल जाता है, किसी को मकान मिल जाता है, किसी का शरीर ठीक हो जाता है, तो वो कहता है अब हम सुखी हैं। जब वह पुत्र बड़ा हो करके तो कहने में नहीं लगता, बुरे कर्म करता है तो फिर उस पुत्र से दुखी है, धन की प्राप्ति हुई तो सुख हुआ, धन गया तो फिर दुख हुआ। तो इसलिए ठिकाना किस चीज का है, ना सुख ही टिक पा रहा है ना दुख ही टिक पा रहा है, दुख भी सदा नहीं रहता और सुख भी सदा नहीं रहता। संसारक पदार्थों का जो सुख है, यदि मानो संसारक पदार्थों में सुख होता तो फिर दुख नहीं मिलता कभी भी, उसी पदार्थ से आज हम सुखी हैं, उसी पदार्थ से कल को हम दुखी हैं, तो दो चीज़ें एक पदार्थ में नहीं हो सकती, या तो सुख ही होगा या दुख ही होगा। कौन ऐसी वस्तु है जिसमें ना सुख है ना दुख है, ये द्वंद्व जो है हमारे को दुखी करता है ना। और हरेक जो संसारक पदार्थ है या कोई व्यक्ति है या परिस्थिति है या मकान है या स्थान है, हरेक में सुख है और दुख है, दोनों चीज़ें हैं। तो सुख और दुख से ही हम परेशान हैं, हम दुख नहीं चाहते सुख ही चाहते हैं, लेकिन जिस जगह से जिस व्यक्ति से जिस स्थान से चाहते हैं वहाँ एक चीज़ कभी भी नहीं हो सकती, वहाँ से सुख आपको कभी भी नहीं मिल सकता, वहाँ से दुख है, लेकिन वो जब आपको सुख की अनुभूति होती है ना तब दुख की अनुभूति नहीं होती, दुख तो छिपा हुआ है वहाँ में, उस सुख के अंदर ही दुख छिपा हुआ है, लेकिन एक समय हमारी एक ही वृत्ति बनती है, जब उस पदार्थ की या व्यक्ति की, जैसे हमारा कोई परिजन बाहर गया होता है, विदेश में गया होता है, या कई दिन के बाद जिसने आना होता है, तो उसकी प्रतीक्षा में हम बहुत लालायित रहते हैं कि जब वो मिलेंगे तो हमारे को सुख होगा। जब तक वो मिलते नहीं तब तक हमारी बहुत ज़्यादा लालायता रहती है, इच्छा रहती है। तो जब वो मिल जाते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं, उस समय क्षण मात्र के लिए तो बहुत आनंदित होते हैं हम, लेकिन थोड़ी देर के पश्चात धीरे धीरे वो घर में ही होते हैं, बाद में कोई मतलब नहीं होता। उसी व्यक्ति से सुख था जब मिला, लेकिन जब वो पास में रहने लगा तो बस मिलने के बाद ही सुख घटना शुरू हो जाता है। वही आदमी जब महीना दो महीने बाहर से आया होता है तो उसी से दुख की अनुभूति होने लगती है। इसी प्रकार मकान है, गाड़ी है, धन है, सभी जो पदार्थ हैं सब में ऐसे हैं। तो जिस सुख को हम चाहते हैं वो सुख पदार्थों में नहीं है। एक ऐसी वस्तु है संसार में, ना उसमें सुख है ना दुख है, आनंद है केवल। वो कौन सी वस्तु है, उसी को ही ढूंढना है। उसी सुख को यदि चाहिए तो वो कैसा सुख है, वो कहाँ है। संसारक सुख क्षणक मात्र है, संसारक सुख जो है दुख का बीज है, उसके बाद में अवश्य दुख मिलेगा। लेकिन एक ऐसा सुख है जो कभी भी नाश नहीं होता, उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। वो है कहाँ, किस वस्तु में है, वो भी वस्तु हमारे पास ही है और कहीं से नहीं मिलने वाली। ये नहीं कि वो कहीं अलग है, हमारे पास है वह वस्तु, लेकिन उस वस्तु की हमने उपेक्षा की है, निरादर किया है, उसको छोड़ करके दूसरी वस्तु जो हम ढूंढते हैं उसमें से सुख नहीं है। कहते हैं पावन वाणी में गुरुदेव जी महाराज की, सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, ताको कहत गुसाई। कौन है वो सुख दुख रहित सदा, ना उसमें सुख है ना दुख है, सदा ही सुख और दुख से रहित है, दोनों ही नहीं है उसमें। कौन सा, क्षणक सुख क्षणक दुख, ये उसमें नहीं है। जो विषयक सुख है वो नहीं है, वो सुख दुख रहित सदा और कैसा है, निर्लेपी, निर्लेप है, असंग है। और वो कौन सा है, गुसाई, गुसाई यानी सर्व का अधिष्ठान, मालक, स्वामी। और वो जो सुख दुख से रहित है, निर्लेप है, असंग है, जो सबका अधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है, ऐसा जो तत्व है वो रहता कहाँ है। जब आपको किसी ने बता दिया कि एक ऐसी वस्तु है उसमें से कभी भी आपको दुख नहीं मिलेगा, जैसे उसको प्राप्त कर लोगे तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे, तो आप पूछेंगे कि वो वस्तु कहाँ से प्राप्त होगी। हम तो ढूंढते फिर रहे हैं ना, कोई बता दे हमारे को आज कि कहाँ रो रहे हो। हम बताते हैं आपको, एक ऐसी वस्तु है उसको प्राप्त करने के बाद कभी भी आप दुखी नहीं होंगे जीवन में। तो उसी समय भागते हैं कि नहीं हम। और वो वस्तु ऐसी है कि उसको प्राप्त करने के लिए धन नहीं खर्चना पड़ता। उस संसार की जो वस्तुएं दे करके कोई लेते हैं, वो देना कुछ नहीं पड़ता, उसको देने के लिए क्रिया नहीं करनी पड़ती। वो कहते कौन है, सुख दुख रहित सदा निर्लेपी, ताको कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याई। कहाँ है वो, सो तुम ही मैं बसे निरंतर, कहते हो वस्तु और कहीं नहीं है, तेरे अंदर ही है, और कहीं से ढूंढना नहीं उसको। जो अपने पास वस्तु होती है उसको लेने के लिए कोई पैसा थोड़ी खर्चना पड़ता है, किसी के अधीन थोड़ी होना पड़ता है, किसी की नौकरी थोड़ा करनी पड़ती है। संसारक सुख चाहने वाले लोगों को क्या होता है, जो विषय का सुख चाहते हैं, या तो किसी के पास नौकरी करनी पड़ती है तब पैसा मिलता है, या कोई बिजनेस करना पड़ता है, या किसी की सेवा करनी पड़ती है, तभी संसारिक पदार्थ मिलते हैं ना, जिनसे हम सुख चाहते हैं। लेकिन जो सुख स्वरूप है वस्तु, वो कहते हैं सो तुम ही मैं बसे निरंतर, और कहीं नहीं है, उसको बाहर नहीं ढूंढना। और रहती कैसे, उसका दर्शन कैसे होता है, नानक दर्पण न्यायी। अब ये तो दृष्टांत सब जानते हैं, दर्पण यानी शीशा। जैसे दर्पण में जो अपना प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब हमारी जो फोटो, हमारा चित्र जो दिखाई पड़ता है दर्पण में, वो दर्पण में है क्या, शीशे में है? जो हमारा मुंह दिखता है शीशे में, मुख हमारा दिखता है, वो शीशे में है ही नहीं, तीन काल में ही नहीं है, शीशे में थोड़ी है वो। हम तो कहते हैं ना, हम अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, अपने आप को। तो हमारा जो अपना आप शीशे में दिखाई पड़ता है, क्या हमारे से अलग होकर दिखाई पड़ेगा? कभी भी नहीं पड़ेगा। यदि आप से अलग हो जाए शीशे में, तो वहाँ से वापस नहीं आ सकता, फिर कैसे होगा, त्वय तो हो जाएगी। वो अपना आप, हम कहते हैं हम अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को अलग नहीं देख सकता कोई। तेन भी तन में मन नहीं पेखा, उन्होंने भी जब तक देह अध्यास का त्याग नहीं किया, तब तक उनको सुख नहीं मिला। तो फिर कहते हैं कि ये जो तन के अंदर मन है, यानी इस शरीर के अंदर, इस स्थूल शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर, जो इसका अधिष्ठान है ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप, इस मन को कोई खोजो भाई, इस मन का कोई विचार करो, उस ज्ञान का, उस स्वरूप का कोई चिंतन करो, उसका खोज, उसकी खोज करो, उस सुख को खोजो, इस मन को कोई खोजो भाई। तन झूठे मन कहाँ समाई, ऐसा चिंतन करो कि ये जो इस तन के अंदर मन है ना, जिसको नारद जी महाराज और सनक सनंदन वर्गे महामुनि जो हैं, उन्होंने देह अध्यास का त्याग करके जिस सुख का दर्शन किया, जिस मन का, यानी मन का अर्थ है आत्मा, जिस आत्मा का दर्शन किया, इस मन को, यानी उस आत्मा को कोई खोजो भाई, उसका कोई विचार करो, चिंतन करो। तन छूटे मन कहाँ समाई, जब ये शरीर छूट जाता है बाहर वाला, वो जो जीव आत्मा है वो कहाँ जाती है, उसकी समाई कहाँ होती है? या इसका दूसरा अर्थ करते हैं कि इस आत्मा को, इस आत्मक स्वरूप का चिंतन करो कि तन छूटे, जब इस शरीर का अध्यास छूट जाता है, जो भ्रांति है इस प्रपंच की, इंद्रिय करण और शरीर की जो भ्रांति है, अध्यास है, ये छूट जाता है। तन छूटे, जब देह अध्यास के द्वारा इस शरीर से अलग होते हैं, मन कहाँ समाई, उस समय जो हमारा आत्म स्वरूप है, अपना आप है, वो कहाँ जाता है? अभी तो हम अपने आप इस शरीर में मान रहे हैं ना, लेकिन जब शरीर से हम अलग हो जाते हैं, तब वो कहाँ जाता है? कहीं भी नहीं जाता, और कोई उसका आश्रय नहीं है, वो सबका आश्रय है, उसका चिंतन करो। ये बात यहाँ पर बतलाई कि उसका चिंतन करो। कहते हैं ठीक है बात, चिंतन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उसको जाना है? प्रश्न किया किसी ने कि कोई ऐसा है संसार में, जैसे नारद जी महाराज हैं, उनका आपने दृष्टांत दिया, कोई है ऐसा जिसने जाना हो? यदि किसी ने जाना है तो कैसे जाना है, कौन है ऐसा आदमी? तो कबीर जी महाराज कहते हैं, हम बता देते हैं, नाम लेकर के बता देते हैं, गुरप्रसादी जय देव नामा। कहते जय देव जी और नामदेव जी वर्गे भक्तों ने जाना है उसको, ऐस मन का उन्होंने दर्शन, यानी उस स्वरूप का दर्शन किया, उस स्वरूप का अनुभव किया, जिस सुख से बाद में कभी दुख नहीं होता, ऐसा सुख स्वरूप जो भूमा है ना, उसको जाना है जयदेव जी ने, नामदेव जी ने। कैसे? गुरप्रसादी, गुरु की कृपा से जाना है, वैसे नहीं जाना, अपने आप नहीं जाना, गुरप्रसाद यानी गुरु की कृपा से। गुरु के पास जाने से उस तत्व का पता चलता है। और कहते हैं ठीक है, गुरु के पास जाने से पता चलता है, लेकिन गुरु के पास जाने से उनको ऐसी कौन सी बूटी मिल गई, कौन सी औषधि है जिससे उन्होंने जान लिया, गुरु ने कौन ऐसा उनको उपाय बताया? तो कहते हैं गुरु के पास जाने से क्या हुआ, गुरु की कृपा हुई, गुरु के पास जाकर के उपदेश ग्रहण किया, गुरमंत्र ग्रहण किया, तो गुरमंत्र का अभ्यास किया तो उससे क्या हुआ, संसारक जो आसक्ति है वो छूट गई, विषय सुख में जो प्रीति थी वह छूट गई, तो भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। नामदेव जी और जयदेव जी वर्गे जो हैं इन्होंने कैसे जाना, भक्ति के प्रेम जाना है तो प्रेमा भक्ति से जाना है, ना चतुराई से नहीं जाना, अपनी चतुराई से स्यानप से नहीं जाना, चतुराई ना चतुर्भुज पाई है कभी भी नहीं मिलता। कोई बहुत स्याणा मानता है ना अपने आप को, जिसको विद्या का अभिमान है, प्रतिष्ठा का अभिमान है, कई लोग धन से स्याणे होते हैं, धन से चतुर होते हैं, जिनके पास धन आ जाता है ना, कह देते हैं ना जिसकी कोठी में दाने हैं उसके कमले भी स्याणे हैं, कहते हैं ना उसके घर में कोई कितना भी मूर्ख हो वह भी चतुर होता है, किस लिए, उनके पास पैसा है, और किसके पास प्रतिष्ठा है, पद है, तो कहते हैं ऐसे नहीं जाना, यदि जाना है तो प्रेमा भक्ति से जाना है। अभी तक जिसने उस सुख को अनुभव किया है, किसने किया है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, दूसरे ने नहीं, अभी तक जिसने पाया है प्रेम से पाया है, ना चतुराई से ना अभिमान से, तो कहते हैं कि वो कैसा है उसका एक बार हमारे को बताओ तो सही। जिस मन की, जिस आत्मा की, जिस ज्ञान की आप बात करते हैं उसका स्वरूप कैसा है, हम ही जानना चाहते हैं वो है कैसा, उसकी कोई विशेषता बताओ। हम ही संसार में कोई चीज़ खरीदनी चाहते हैं तो उसकी, उसके गुण पूछते हैं कि नहीं, कि ले तो लेंगे लेकिन बताओ इसमें क्या क्या विशेषता है। तो कहते हैं कि हम बताते हैं आपको, खरीदना चाहते हो यदि ग्राहक हो तो हम बता देते हैं कि इस मन को नहीं आवन जाना। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो आत्मक स्वरूप है उसमें आवन जान नहीं है। सबसे बड़ा दुख किस बात का है, आने जाने का, हमारे को जन्म और मरण। कहते हैं जी उसको खरीदना चाहते हो, लेना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो उसमें आवन जान नहीं है, आवागमन नहीं है, ना वो जन्मता है ना मरता है। आना जाना किसमें होता है, एक और प्रश्न है, आना जाना किसमें होता है, जो देश और काल के अधीन होता है, जो परिच्छिन्न होता है उसमें आना जाना होता है। देश और काल दो चीज़ें होती है ना, देश यानी ये देश, उसके आगे दूसरा देश, ये वाला नहीं कि भारत और पाकिस्तान, ऐसी बात नहीं है। देश का मतलब स्थान, इससे आप उधर दूसरी तरफ नहीं दे सकते, आप यहाँ हैं तो द्वार के बाद में आप नहीं हैं, ये बड़ा देश, जो देश और काल के अधीन होता है। हम आज यहाँ पर हैं ना, तो जो भूतकाल बीत गया उसमें नहीं थे हम, ऐसे नहीं थे। जो देश काल के अधीन होता है ना, देश काल के अधीन, उसमें आना जाना होता है। यदि हम दूसरे घर में जाना चाहते हैं ना, दूसरे देश में, तो जहाँ से हटना पड़ेगा तभी जाएंगे ना, तो हम एक ही देश में रह सकते हैं, दूसरे में नहीं, तो हमारे में आना जाना हुआ कि नहीं। घाटपट जितने संसार के पदार्थ हैं सब में आना जाना है, घड़े से पानी लाना है दूसरे कुएं से, तो जहाँ से घड़े को हटाना पड़ेगा। आना और जाना किसमें है, जो देश काल के अधीन है, तो जो व्यापक है उसमें आना जाना नहीं है। वो कैसा है, आत्मा कैसा है, व्यापक है, सर्वत्र है, सभी देश में, सभी काल में, सभी वस्तुओं में है, तो उसमें आना जाना कहाँ से होगा, कभी भी। आकाश जो है सभी जगह व्यापक है कि नहीं, तो आकाश को आप कहीं ले जा सकते हैं, कहीं नहीं ले जा सकते। یہ نہیں کہ آکاش کو جہاں سے اکھیڑ کے وہاں لے جاؤ، وہاں تو پہلے ہی ہے، اس کو نہیں آپ لے جا سکتے، نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ ہاں اتنی بھرانتی ہو سکتی ہے کہ گھڑے میں جو آکاش ہے نا، گھٹ میں، گھڑے میں اس کا آنا جانا دکھائی پڑتا ہے، گھڑے کے آنے جانے سے۔ سوریہ جو ہے ایک ہی جگہ ہے لیکن گھٹ میں آپ کو دکھائی پڑتا ہے، جیسے جیسے گھڑا آپ لے جاتے ہیں تو سوریہ ساتھ ساتھ میں دکھائی پڑتا ہے۔ ایسی بھرانتی ہو سکتی ہے لیکن وہ ایسا ہے کہ اس من کو نہیں آو نہ جانا۔ یہ جو آتمک سروپ ہے نا، شدھ سروپ برہم، اس میں آنا جانا نہیں ہے، لیکن ایسا جو برہم ہے، ایسا جو آتمک سکھ ہے، کہتے ہیں اس کو جانا کس نے ہے، سمجھ کس میں آئی ہے، جس کا بھرم گیا دوسرے کو نہیں پتا چلا۔ ابھی ہم نے آپ کو نویدن کیا نا کہ گھڑے میں جو آپ کو گھڑے کے پانی میں جو سوریہ کا پرتیبمب پڑ رہا دکھائی پڑتا ہے نا، جو انجان ہے وہ کہے گا سوریہ چل رہا ہے، گھڑے کو لے کر جائے گا تو ساتھ ساتھ میں سوریہ چل رہا ہے کہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بادل دوڑ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا سوریہ چل رہے ہیں، آکاش میں ہمارے کو دکھائی نہیں پڑتا، تھوڑی دور تک دکھائی پڑتا ہے، آگے نہیں دکھائی پڑتا، تو بھرانتی ہو جاتی ہے کہ نہیں کہ سوریہ کو بادل نے ڈھک دیا۔ ہم کہتے ہیں سوریہ کو کیا ہوا آج، بادل نے ڈھک دیا۔ تو جدی بادل سوریہ کو ڈھک دے تو یہاں پر ہمارے کو سوریہ دکھائی نہیں پڑتا، 10 کلومیٹر میں دکھائی پڑ رہا ہے، تو کیسے بادل نے ڈھک دیا اس کو، ان کو بھی نہیں نا دکھائی پڑنا چاہیے۔ اتنا بڑا سوریہ جو ہے اس کو پریچھن بادل نہیں ڈھک سکتا، لیکن ہماری درشٹی جو ہے کیا ہے، درشٹی کو ڈھک دیا بادل نے، سوریہ کو نہیں ڈھکا۔ ہم نے دیکھا اوپر کو تو آگے بادل ہے، بادل ہماری درشٹی کو ڈھک سکتا ہے، سوریہ کو نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس آتم سروپ میں آواگمن نہیں ہے، وہ انادی ہے، انت ہے، اس میں جنم مرن نہیں ہے، آتما میں بھی نہیں ہے، نہ جائےتے مریتے وا کداچن، نائم بھوتوا بھوتا وا نہ بھویا، اجہ نتیا شاشوتو یم پرانو نہ ہنتے ہنیہمان شریرے۔ بھگوان کرشن کہتے ہیں کہ وہ جنمتا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے، شاشوت ہے، نتیہ ہے، نہ ہنتے، کبھی بھی نہیں مرتا، ہنیہمان شریرے، اس شریر کے مرنے پر اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا جو آتمک سکھ ہے جس کا بھرم گیا تن ساچ پچھانا، جس کی بھرانتی دور ہوئی ہے نا، پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جن نانک بن آپا جی نے مٹے نا بھرم کی کائی، جب تک بھرم کی کائی نہیں نا مٹتی تب تک نہیں پراپت ہوتا سکھ۔ تو اس لیے کہتے ہیں جس کا بھرم دور ہو گیا اس نے اس ستیہ کو پہچان لیا، تو اس من کا روپ نہ ریکھیا کائی، کہتے ہیں کہ اس کی اور بھی کوئی وشیشتا ہے، ایک تو ہم نے سمجھ لی کہ اس میں آنا جانا نہیں ہے، تو آنا جانا کس لیے نہیں ہے یہ ہم سمجھ گئے کہ نہیں، کوئی ایک بات دماغ میں رہنی چاہیے ہر روز سننے پر، آنا جانا کیوں نہیں ہے، کیونکہ ویاپک ہے، دیش کال کے ادھین نہیں ہے، اس لیے آنا جانا ہوتا ہے جو دیش کال کے ادھین ہوتا ہے، پریچن جو ویاپک ہوتا ہے سبھی دیشوں میں، سبھی کالوں میں، سبھی وسطوں میں جو ہوتا ہے اس میں آنا جانا نہیں ہوتا۔ تو پھر کہتے ہیں اس من کو روپ نہ ریکھیا کائی۔ دوسری وشیشتا یہ ہے پرماتم سروپ کی، برہم سروپ کی، کہ جیسے ہم ساویو ہیں نا، ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں نا، تو ہمارے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر نشان چن ہوتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ کے اوپر کون سا، ریکھ ہوتی ہے نا، ریکھا جس کو ہم بولتے ہیں، کوئی چمر کی، کوئی چتر کی، کوئی ریکھا ہوتی ہے کہ نہیں بنی ہوئی، کس کے ہوتی ہے یہ ریکھا، جو ساویو ہے، جو اویو والا ہے، جو شریر والا ہے، اس کے ہوگی نا ریکھا۔ تو کہتے ہیں اس میں نہ ریکھ ہے نہ روپ ہے، ہمارا روپ بھی ہے، نیل پیتا دی ہوتے ہیں نا روپ، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، اور ہمارے ریکھا بھی ہوتی ہے، کس لیے، جو ہمارا شریر ہے، ہم ساویو ہیں، وہ کیسا ہے، نراویو ہے، نراکار ہے، उसमें क्या है, इस मन, मन का अर्थ यहां पर क्या है, आत्मा परमात्मा ब्रह्म, उसमें ना रूप है ना रेख है, यानी निरावैव है, तो उसमें रूप भी नहीं है कोई रेखा भी नहीं है। कैसे, एक जगह गुरु गोविंद सिंह महाराज लिखते हैं कि वो कैसा है, चक्कर चिहन और वर्ण जात, चक्कर चिहन और वर्ण जात, ना चक्कर है जो चक्कर बना होता है यहाँ, चक्र का चिन्ह उसके ऊपर नहीं है, ना वर्ण है उसका कोई, ना जाति है, चक्र चिन्ह और वर्ण जात और पात न है निजे, रूप रंग और रेख भेख को कह ना सकते, कह ही नहीं सकता कोई, है ही नहीं। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहित जाए, ऐसा है वो, अचल है, स्वयं प्रकाश है। उसकी बात करते हैं कि इस मन का रूप न रेख्या काई, इस आत्म स्वरूप में ना रूप है ना कोई चिन्ह है। तो कहते हैं ये जो संसार है ना, ये फिर कैसे दिखाई पड़ता है, उसका दर्शन कहाँ करेंगे, हम तो इस संसार को ही देख रहे हैं, जो सावैव पदार्थ है उसी को देख रहे हैं, तो उसका दर्शन कैसे होता है, ये संसार का भ्रम उसमें कैसे हुआ है, ये कल को विचार करेंगे। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की।